καλύνα.
Σα έχω βουλά έκανα.
Βε κουστο καλύνα. Καχόνα καχόνα.
Κοντιο τα τσαό.
Φίγε κουκούσνα.
Κουτς καλύνα. Κουτς άκο.
कोई गाल करो ना जी।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़। प्रोड्यूसर हमारे अंजुम हैरल गिल हैं, हमारे इंजीनियर हैं कर्टिस बायनम, और फेसबुक लाइव पर हमारे साथ हैं वर्दा खलील। वर्दा खलील का नाम आया है तो याद दिला दूं कि हमारे जो सुनने वाले रेडियो पर यह प्रोग्राम नहीं सुन सकते वो फेसबुक पर, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत है तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं, और साथ साथ आप हमारे मेहमान को और उनके काम को भी देख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने मेहमान से आपकी मुलाकात कराएँ, एक झलक इस डॉक्यूमेंट्री की सुनिए।
वो इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वो दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वो कंट काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वो टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। पति की मृत्यु होते ही यह विधवा औरतें घर से निकाल दी जाती हैं या निकलने को बाध्य कर दी जाती हैं। रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, पर कोई पत्थर नहीं पसीजता।
महिला ने अपनी बात कही कि किस प्रकार से घर से उसको निकाला गया। हावड़ा स्टेशन आई, दिल्ली पहुंची, वहां टिकट कलेक्टर ने उसे रोक लिया। उसे कहा कि मैं विधवा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं टिकट कहां से दे सकती थी। तो फिर एक पुलिस ने कुछ लिख के दे दिया, उनको वृंदावन उतार दिया। ऐसे भी बिना खाए बैठी थी ट्रेन में, और वृंदावन के स्टेशन पर दो दिन बैठी रहीं बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ पानी पी करके। थर्ड डे कोई आदमी मिला उनको, और उसने वो एक कप चाय और दो बिस्कुट दी। वो कह रही थी कि साहब अमृत को तो मैंने कभी पिया नहीं है, लेकिन वो जो चाय थी हमारे लिए वो आज भी मुझे लगता है वो अमृत के समान।
मेरा आदमी जब चली गई मेरे को कोई ढूंढा नहीं है। मैं कलकत्ता से अपने आप एक कोठी में काम करती, उसी से मैं छुट्टी करके भाग के आई वृंदावन, पूछ पूछ के मैं आ गया।
ये किसी एक विधवा की कहानी नहीं है। उम्र 16, 18, 40, 50 कुछ भी हो सकती है। नाम साधना, ललिता, लक्ष्मी, रेणु या मानो कुछ भी। आगे भी अंधेरा, पीछे भी अंधेरा। आंसू भरे इन चेहरों को देखिए, यह गंगा का प्रवाह है या यमुना का, और सूख गई आंसुओं की लुप्त सरस्वती भी। वृंदावन की इन माताओं की व्यथा कथा सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक पहुंचती है।
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह लिखा हुआ था कि माननीय उच्चतम न्यायालय यह जानना चाहती है कि वृंदावन की जो विधवा महिलाएं हैं, जिनको रात का खाना नहीं मिल पाता है और किसी प्रकार जीवन यापन करती हैं, क्या सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उनको खाना खिला सकता है। एक वादा करना चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं रोटी बांट के खाऊंगा, इन माताओं बहनों को भूखे सोने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रण है।
तो ये आवाज़ है हमारे मेहमान की, डॉक्टर बिंदेश्वर फाटक। बहुत बड़ी ऑनर है मेरे लिए डॉक्टर साहब कि आप दूसरी बार मेरे प्रोग्राम में आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और आपकी पूरी ज़िंदगी जो बांट के खाने वाली आपने बात की, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानों में बांटी हुई है, और मैं तो उसी से क्या, आपने कितनी लोगों को मुक्ति दिलाई जो गंदगी साफ करते थे, जिन्हें कोई छूने को तैयार नहीं था, जिन्हें अपने घरों में उनका साया भी पड़ जाता था तो लोग पूरे घर को पाक करते थे अपने, तो उनको आपने किन किन जगहों पे पहुंचाया, बाहर के मुल्कों में लेके गए, लेकिन ये जो नया काम आपका है ये अपनी जगह जो बेवा औरतें हैं उनको समाज में उनका मकाम दिलाना, मैं वीडियो देख रही थी कि होली खेल रही हैं रंगों से, कोई तसव्वुर क्या क्या गुजरी उन पे जब उन्होंने इतनी बड़ी खुशी उन्हें आपने दिलवाई तो?
उनकी आंख से आंसू आने लगे और कहा कि पहले तो हम लोग मरना चाहते थे क्योंकि खाने का पैसा नहीं था, भीख मांगती थी, दवा की इंतजाम नहीं था, और सबसे बड़ी बात थी कि मरने के बाद उनके लाश को काट करके यमुना जी में फेंक देते थे। ये हिंदू जो रिचुअल्स होते हैं उनके अनुसार कोई उनके क्रेमेशन नहीं होता था।
अच्छा।
तो अब ये सब हमने करवाए और अब हम 2000 महीने रुपए देते हैं उनको खाना खाने के लिए और उनके हाथ में देते हैं तो अपने बना के खाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं। एम्बुलेंस का इंतजाम है हर आश्रम में, डॉक्टर का इंतजाम है, उनको पढ़ाते हम लोग हैं और काम भी सिखलाते हैं। फिर कुछ तो हमने ये सोचा कि ये सब काम तो ठीक है लेकिन इनके जीवन में जो उदासी है, अब भारतवर्ष में ये है कि जो पति के मरने के बाद सादा खाना खाना, सादा कपड़ा पहनना, हंसना नहीं, बोलना नहीं, अपने ही घर में वो अपशकुन हो जाती है, कोई शादी घर में हो रही है तो उनको एक रूम में कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि शादी के समय वो वहाँ
छाया ना पड़े उनके,
ना रहे।
बिल्कुल।
तो इसको हमने तोड़ा और उसे कहा कि नहीं, आपको भी जीने का अधिकार है और जब तक आप नहीं अपने को तोड़ेंगे तो दूसरा कुछ नहीं कर सकेगा। तो आप उनको हमने इंकरेज किया और सबसे बड़ी बात क्या कि जो महिलाओं का हमारे यहाँ है कि मायके का जो माँ का जो घर होता है बड़ा प्यारा उनको होता है।
जी बिल्कुल।
पति के घर से भी माँ का घर जो है ज्यादा उनका स्नेह प्यार रहता है। तो हमने क्या किया, इनको मायके का प्यार दिया, उनको लगता है कोई मेरा भाई है, कोई पिता है, कोई है जो मुझे देखने वाला है, मुझसे बात करने वाला है, तो वो जो प्यार दिया, स्नेह दिया हमने, उससे क्या फायदा हुआ कि जो हमने कहा कि अब तुम जियो, अब हंसो, आप भी गाओ, आप भी नाचो, आप दीपावली यहाँ पर फायर वर्क्स होता है तो आप दीपावली मनाओ और होली खेलो, तो होली खेलना तो इस देश में कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो दीदोज हैं, जो विधवा महिलाएं हैं वो कभी रंग भी छू पाएंगी, ये तो कल्पना से बाहर की बात थी। लेकिन उनको हमने इनकरेज किया तो फिर शुरू में तो थोड़ा जो होता है जो सामाजिक जो रीति रिवाज है उसको तोड़ने में कठिनाई होती है, लेकिन आज 5 साल से वो दीपावली मना रहे हैं और रंग भी खेल रहे हैं, और रंग तो ऐसा खेलती है कभी आप आए इंडिया तो दावत देते हैं, आप आइए।
डॉक्टर साहब इससे बड़ी खुशी का तो मैं समझती हूँ, मैं जरूर ऐसा करूँगी और मैं वर्दा खलील हमारे साथ हैं फेसबुक पे, वर्दा से कहूँगी कि इसमें हमने दिवाली का उनकी जो खेल रही हैं एक हमने वीडियो डॉक्टर साहब ने भेजा हुआ है तो वो भी डालें ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो देख सके कि किस खुशी से। और अच्छा मुझे बड़ी अच्छी सी बात लगी डॉक्टर साहब, आपके हाथों पे तो इतनी सारी राखी बंधी हुई है, मेरा ख्याल है कोई हजारों लोगों ने आपके हाथ पे राखी बांधी है रक्षाबंधन में।
हाँ तो हाँ ऐसा है ना कि 1000 तो जो माताएं बहने वो वृंदावन की हैं कि वाराणसी से आ जाती हैं तो सब मिला के करीब 1000-1200 हो जाती है और सब चाहती है कि हाँ जो बंधन है ना राखी रक्षा बंधन
जी,
तो वो जो भाई बहन का प्यार का जो प्रतीक है तो उसके चलते सारे हम तो हर सारे हाथ में बांध देते हैं, जगह नहीं बचता है बांधने के लिए तो बहुत अच्छा भी लगता है हमको।
मुझे एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि आपने जिक्र किया कि हिंदू मत में जो थी एक चली आ रही थी, एक अजीब सी बात यह है कि इस्लाम में बेवाओं की शादी को मुस्तहसन कहा गया है, और ये कहा गया है कि उनकी शादी होनी चाहिए अगर किसी का चले जाता है और अगर उस औरत की रजा हो। लेकिन कुछ ये कल्चर का असर ऐसा है कि अभी तक मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ मेजॉरिटी ज़ाहिर इस्लाम मजहब है, वहाँ पर जब शादी ब्याह का मौका होता है और कोई औरत बेवा होती है तो उसको पीछे हटा दिया जाता है किसी भी रस्म में, किसका साया मनहूस है उसको, उससे नहीं करवाई जाती है रस्म। और अगर वो अच्छे कपड़े पहने, चूड़ियाँ भी तोड़ दी जाती हैं। तो मतलब ये सिर्फ मज़हब नहीं है, मुझे लगता है कल्चर का इतना गहरा असर होता है कि मतलब उसमें कहीं कहीं हम भूल जाते हैं कि जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अपनाना चाहिए और जो अच्छी नहीं है उनको नहीं। लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादा असर ये हिंदुस्तान में तमाम लोगों पर है, सिर्फ हिंदू मज़हब से इसका ताल्लुक नहीं है। आपको ऐसा लगता है डॉक्टर साहब?
ऐसा है कि जो आपने कहा वो सही कहा है, वो शायद जितने भी मजहब है सब में, पहले क्रिश्चियनिटी में भी पहले काफी था इसमें, और कैथलिक में तो बहुत ही था, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म जो आया बाद में इसीलिए आया। तो जैसे नाइजीरिया में तो है कि पति के मरने के बाद पत्नी को साथ में सोना पड़ता है उसके साथ, डेड बॉडी के साथ 7 दिन के लिए।
अच्छा।
और 7 दिन के लिए डेड बॉडी के साथ सोना पड़ता है, और उनके जो बाल हैं वो शीशा तोड़ के, ग्लास के शीशा तोड़ के उससे वो बनाते हैं, उनके बाल को बाल काटते हैं उसका। हम
बताइए कितनी तकलीफ, यानी एक तो एक औरत की जिंदगी वैसी उजड़ गई, उसका शौहर चला गया। मैं डॉक्टर साहब बहुत ही तकलीफ दे बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी सी बात हम करें। और मैं, मुझे याद है आप जब आए थे आपने कहानी सुनाई थी जब अपनी, किस तरह आप को पता लगा इंसानों की बराबरी नहीं है और किस तरह आप इस तरह मायल हुए, दादी का किस्सा आपने सुनाया था। मैं चाहती हूँ मुख्तसरन हमारे सुनने वालों का अगर आप सुनाए वो किस्सा, किस तरह शुरू।
ऐसा है कि भारत में आजादी के पहले बहुत अधिक था, कानूनन तो अब नहीं है, बट सामाजिक रीति रिवाज में अभी भी थोड़ी गाँव सब में समस्या है। तो जो मैं बच्चा था उसमें आजादी की पहली की बात है, तो उसमें एक औरत आती थी हमारे घर में, वो बांस का जो सामान होता है ना, हम लोग सूप बोलते हैं, सूप डगड़ा, महिलाएं जिससे अनाज बीजती हैं,
जी जी जी, फटकती हैं उसमें डाल के, बिल्कुल
फटकती हैं, जी जी एकदम। तो वो देने आती थी, तो जब लौटती थी तो मेरी दादी पानी छिड़ती थी जमीन पर। तो मुझे होता था, जब बच्चा मुझे कौतूहल होता था कि इतने लोग घर में आते हैं तो दादी पानी नहीं छींटती हैं, ये जब महिला आती है तो पानी क्यों छींटती है। तो लोग कहते थे कि वो अछूत है, उसके चलने से जो जमीन है वो पोल्यूट हो जाता है, छुआ जाता है, इसलिए पानी छींटना पड़ता है उसको शुद्ध करने के लिए। तो मेरी आदत बन गई कि मैं छू के देखता था कि मेरे वजन में कोई रंग में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, तो नहीं कुछ होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अकस्मात, मेरा घर बहुत बड़ा घर था तो वहाँ बहुत टर्निंग पॉइंट था, उसमें से कुछ चीजें नहीं देख सकता था दूसरे को। एक दिन दादी जो है वो जल्दी आ गई पानी छिड़कते हुए, और जैसे ही छुआ हमने उस महिला को, दादी ने देख लिया, बड़ा कोहराम मचाया घर में। दादी ने कहा कि ये तो बात मानता ही नहीं है, बहुत बदमाश है, ऐसे है वैसा है। तो फिर पंडित जी को बुलाया गया और पटरा लेके आए, तो पहला जो उन्होंने कहा वो तो मेरी माँ तो एकदम अड़ गई, बोला कि बच्चा 5-7 साल का है, 8 साल का, और इसको हम दूसरे घर कैसे रख सकते हैं। पंडित ने कहा था दूसरे घर रखना पड़ेगा इनको, तो कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता है कि बच्चा अपना दूसरे घर रहेगा। तो फिर दूसरा कहा कि अच्छा ऐसे करिए, इनको ये काउडंग होता है ना, गाय का गोबर,
जी जी,
तो कहा गाय का जो काउडंग का जो गाय का गोबर, गाय का जो यूरिन है, जो मूत्र है, इनको खिलाया जाए और पिलाया जाए, और गंगा जल से इनको स्नान कराया जाए। हार्श विंटर था, जनवरी का समझिए जाए होता है वो, तो पटक करके बच्चों से पटक करवा के दादी ने मुझे करवाया था, मुझे आज भी याद है।
तो
और आपके आप लोगों के दुआ से, अल्लाह के कृपा से ये हुआ कि भगवान ने मुझे ताकत दिशा दिया, ऐसा मौका दिया कि आज उन अछूतों को हमने इस काम से निकाला है, और जो उनको पढ़ाया लिखाया है, और अब अच्छा पैसा कमाते हैं, अब कैंपस में जाते हैं और पंडितों के साथ घर जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके यहाँ सामान बेचते हैं, महिलाओं का फेशियल करते हैं सब। अब
तो
पूरा का पूरा मौका बदल गया। और फिर हमने एक दूसरा चीज किया कि हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे संविधान में भी है कि हम इस्लाम चाहे तो हम कबूल कर सकते हैं स्वेच्छा से, बाय डिस्क्रिप्शन क्रिश्चियनिटी अपना सकते हैं, हम बुद्धिस्ट भी अपना बन सकते हैं। तो हमने एक नया दिया है यहाँ पर कंसेप्ट इंडिया में कि जब हम स्वेच्छा से डिस्क्रिप्शन से हम दूसरा धर्म अपना सकते हैं, तो हिंदू धर्म में ही जो नीचे के लोग हैं, दलित हैं, जिनके चलते लोग नाक भोट सिकोड़ते हैं, तो क्यों नहीं ये दूसरे जात को स्वीकार कर सकते हैं। ये तो हमने ब्राह्मण बना दिया, इनको ब्राह्मण बना दिया हमने। तो ये बड़ा ऐसा इतिहास हुआ नहीं था, ऐसा गांधी ने सोचा हुआ कि ऐसा हो सकता है कभी भी।
मैं तो ये हैरान हूँ कि आप हंसी खुशी बैठे बातें कर रहे हैं, आपकी कितनी आपकी खिंचाई हुई होगी, कितना आपको बुरा भला कहा गया होगा।
बहुत बुरा भला के लोग कहते थे हमको।
हाँ।
लेकिन मैं तो ऐसा था कि मेरी जब शादी मेरी जल्दी हो गई थी और जिस काम में मैं आया था, तो हमारे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, बड़े रिच थे वो।
अच्छा।
तो हम तो बहुत नाराज होते थे और एक दिन तो इतना नाराज हो कि कहा कि आपका चेहरा हम देखना नहीं, फेस देखना नहीं चाहते।
ससुर साहब ने कहा।
हाँ, ससुर साहब ने कहा और कहा कि हम ब्राह्मण नहीं होते तो लड़की की शादी हम दूसरी कर दिए होते। तो हमने कहा कि देखिए, अब गांधी का सपना पूरा करना है, इतिहास का जो पढ़ना है उलटना है, तो अब तो मैं इस काम को छोड़ नहीं सकता हूँ। यदि आप चाहें तो आप बेटी शादी दूसरी कर सकते हैं, मुझे चार्ज नहीं होगा, या आप इंतजार कीजिए, हम सफल हो जाएंगे तो आपके बेटी का हम ध्यान रखेंगे। तो बड़ा कठिन था हमारे लिए। और सो ये उसी प्रकार से जो हम रहते थे ना, वो जो एक कॉलोनी में अंतरचूस के कॉलोनी में रहते थे हम, तो एक बच्चा जो था वो लाल कपड़ा पहने हुए था, अब बुल ने उसको अटैक कर दिया।
अच्छा।
और उसको दौरा सब लोग बचाने के लिए किसी ने कह दिया कि वो लड़का तो ह्यूमन स्कैवेंजर फैमिली का है, वाल्मीकि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, एक शब्द है जो आजकल मना हो गया बोलना, उसको हम नहीं बोल रहे हैं। तो वो उसका कॉलोनी का लड़का, सबने छोड़ दिया। अब इमेजिन कर सकती हैं कि धर्म और जाति के आधार पर बच्चे को तो बचाएगा, और उसको हम लोग ले गए, हम लोग अस्पताल में, बच्चा दम तोड़ दिया, वो बच नहीं पाया। तो उसी दिन हमने गांधी कसम खाई कि अब हम गांधी का सपना पूरा करके रहेंगे।
बराबरी।
संजोग है कि आप जो हमसे बात कर रही हैं, तो एक जो आशा की किरण हमारे सामने दो बच्चे हुए हैं, संजोग से आज हम उनका परसों एक फंक्शन में उनको बुलाया था, हमने आ गए हैं, संजोग से बुलाया, तो आपसे बात हुई तो हमने बुला लिया उनको।
अच्छा।
ये इसमें ये है कि एक आज से 4 साल पहले 2013 में उत्तराखंड की जगह है इंडिया में
जी,
नॉर्थ पार्ट में, वहाँ पर डिवेस्टेशन हुआ था फ्लड में, केदारनाथ का टेम्पल वहाँ पर है।
अच्छा।
तो वहाँ हजारों लोग मर गए थे उस पानी में, तो उसमें से एक गांव से 32 बच्चे लापता हो गए उसमें, वो सब की उम्र थी 30-32 वर्ष की उम्र सबकी थी। तो उसमें हमने उन गांव के लोगों को 2000 महीना सभी बच्चों को भी, सियाने को भी, बीडो को भी, और आज भी दे रहे हैं और उनको हम देखभाल कर रहे हैं। तो उसमें से एक लड़की मेरे सामने बैठी है और एक लड़का बैठा हुआ है। तो ये लड़की खड़ी थी अपने भाई के साथ डॉक्टर का जानने के लिए, तो लड़का जो है टैक्सी ड्राइवर है ये।
अच्छा।
तो ये जा रहा था, रास्ते में देखा इन लोगों को, तो गाइड का पूछा कहाँ जा रहे हो आप लोग, क्या कहाँ जाना है, कहाँ डॉक्टर कहाँ जाना है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। तो इस लड़के ने जाके उसको डॉक्टर का छोड़ दिया, ऐसे उसकी मुलाकात बढ़ती चली गई। और फिर इस लड़के ने प्रपोज कर दिया, मालूम हुआ कि लड़की बीडो है, 19 वर्ष की थी उस समय।
अच्छा।
अभी 23 वर्ष की है। तो उसको प्रपोज किया, इसने अपने इसके भाई से कहा पहले कि भाई हम चाहते हैं इस लड़की से शादी करना, बोलो तू बताया, उसने बताया कि लड़की विडो है
जी।
बोले कोई बात नहीं है, तो हम शादी करेंगे, इससे अच्छी लड़की है, हमको अच्छा लग रहा है। तो उसके फिर माता पिता और सब बहुए, अभी स्थिति यह है कि इसको एक लड़का भी है 2.5 साल का, एक लड़की है करीब 1 साल की, और ये दोनों मेरे सामने बैठे।
तो कौन ज्यादा अच्छा बोलता है दोनों में से, बात करने में कौन ज्यादा तेज है?
ये लड़का बोलेगा।
अच्छा, बात कराएं जी, इनसे बात कराएं। नाम क्या है इनका?
नाम अपना नाम बोलिए। बोल रहा
जी मैं, नमस्ते
जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम है राकेश कुमार।
राकेश बेटा ये बताओ मुझे, डॉक्टर साहब जो हैं, पहले डॉक्टर साहब के बारे में पहले तो मुझे बताओ, कैसे आदमी हैं ये?
जी बहुत अच्छे आदमी हैं।
क्या सर इन्होंने आपकी क्या सीखा आपने इनसे, इनकी जिंदगी से?
जी मैंने इनसे इनकी जिंदगी से सीखा है कि दूसरे को भी सहारा देना बहुत जरूरी है, और वैसे हर किसी की मदद भी करनी चाहिए। जैसे आदमी लगता है कि सोचता है अपने बारे में कुछ भी कि, तो ये हमें सिखाते हैं कि अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो, अच्छे हिसाब से आगे बढ़ो, ईमानदार करो।
तो आपने तो ये सब अच्छी बातें सीखी, मगर जब आपने एक बेवा से शादी, एक विधवा से शादी का सोचा होगा, तो पूरा आपका तो समाज खड़ा हो गया होगा कि क्यों कर रहा हो, ऐसा हुआ?
जी ऐसा भी हुआ।
क्या हुआ बताइए थोड़ा।
जी ऐसा भी हुआ, पर मैं अपनी जगह पे अटल रहा। मैंने कहा मुझे लिए लड़की पसंद है, ये बेवा है, तो इसका मतलब ये इसकी कोई, ये इसकी तो गलती है नहीं।
हाँ,
अब इससे ये मतलब ये इसने तो जान गई है, तो बेवा हुई नहीं कि मैं बेवा हो जाऊंगी या ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी मेरी जिंदगी में। हर कोई तो अच्छा खाना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है, अच्छी सोच है, अच्छा मतलब अपने आप में सोचता है कि मैं अच्छा रहूं, अच्छा खाऊं पीऊं, अच्छा अच्छी सोसाइटी में रहूं, तो अच्छा ही तो लगता है।
दुरुस्त। तो अभी कैसी जिंदगी है? नाम क्या है इनका, बीवी का आपकी?
जी जी बात करो, विनीता।
जी विनीता से बात।
मैं
नमस्ते। नमस्ते वनीता, कैसी जिंदगी है अब आपकी, थोड़ा सा बताओ कैसा है राकेश, कैसा रखता है आपको?
बहुत अच्छा मैम।
बहुत अच्छा रखते हैं।
हाँ,
तो और हमारे डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर फाटक के लिए कुछ बोलो, कैसे इंसान है
वो? तो बोलने की क्या बात है मैम, वो तो इतने अच्छे है, हम बोल भी नहीं सकते, उनकी तारीफ भी नहीं कर सकते है।
हाँ। तो कभी सोचा था कि ऐसे शादी हो जाए, हो सकती है दोबारा तुम्हारी?
वो भी नहीं सकती थी मैम, सोचा ही नहीं था, पर सर की बात की सुन के, सर का सपोर्ट मिल के यहाँ तक भी पहुँच गए, और ये भी सोचोगी दो बच्चे भी हो गए इनकी वजह से।
बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहब को फोन दे दो अभी। तो बहुत शुक्रिया राकेश और वनीता आप दोनों का। डॉक्टर साहब मैं आपके लिए फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने बड़े प्यार से आपके लिए पैगाम भेजे हैं, तो मैं कुछ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। मोहम्मद निसार, अकरम अली, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद सैयद यूसुफ जई, आशिक खास खैली, आशिक अहमद, अकरम अली, शुएब हसन। निहालिका ने कहा है कि आप इनाम के मुस्तहिक हैं, मैं भी आपसे पूछूंगी आपको कितने हज़ारों इनाम मिले हुए हैं। और खालिद उमर नियाजी साहिबान, तो थोड़ा सा बताइए, इनाम तो आपको बहुत मिले हैं, याद भी नहीं होगा कौन कौन से मिले।
तो पहले तो हम जितने लोगों ने अपने अपने नाम पढ़े सबको, हम अल्लाह की दुआ करते हैं कि अल्लाह सभी लोग अच्छा से रखे, बढ़िया से रखे, और हम लोग भी अच्छे इंसान हैं, तो सारा इंसान मिलके संसार अच्छा बनाए। इन लोगों को पहले हम अपनी तरफ से और अल्लाह से दुआ करते हैं कि लोग से बढ़िया रखे इन लोगों को। मतलब जो इनाम मिला हुआ है हमको, तो भारत सरकार का जो गवर्नमेंट का अवार्ड होता है, पद्म अवार्ड होता है
जी, सबसे बड़ा,
तो पद्म भूषण मिला हुआ है, और सैन फ्रांसिस प्राइज मिला था हमको 92 में वहाँ पर इटली में, जॉन पॉपोल जॉन पॉपोल 2 में दिया था हमें, और उन्होंने कहा था कि पुअर के लिए तुम काम कर रहे हो तो ये गॉड का सबसे बड़ा ये है सर्विस है, तो आप करो इसके लिए। तो ये स्टॉकहोम प्राइज मिला स्वीडन में हमको, और ऐसे काफी पुरस्कार में, अपने हाथ मुंह से बोलना अच्छा लगता है पुरस्कार के बारे में।
नहीं नहीं प्लीज आप बताइए, सुनने वाले जानना चाहते हैं बहुत शौक से आपके बारे में।
अभी तो एक लाल बहादुर शास्त्री थे प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ, उनके नाम का एक नेशनल अवार्ड है जो राष्ट्रपति ने मुझे दिया 10 तारीख को।
अच्छा।
और जो अभी प्रेसिडेंट, जो नए प्रेसिडेंट हमारे यहाँ हुए हैं, और जो हमारे लिए बात कही वो सभी पुरस्कारों से बड़ी बात ये कही कि डॉक्टर पाठक में गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और ये लाल बहादुर शास्त्री, ये तीनों के गुण डॉक्टर पाठक में है, तो थ्री इन वन ये है।
ये बात सही है। और मतलब डॉक्टर अंबेडकर वगैरह जो उनका ख्वाब था आपने उसको पूरा किया डॉक्टर साहब। मैं तो जब आप पहली दफा आए थे तो मैं यकीन माने मैं हफ्तों तक ये सोचती रही कि कोई एक इंसान कैसे ये कुछ कर सकता है। आपने जिसको मुक्ति दिलाने का नाम दिया था, हरिजन जो थे उनको आपने मुक्ति दिलाई हजारों की तादाद में, उन बच्चों को आपने बाहर ले गए, पता नहीं दुनिया का हर काम वो करते हैं। पहली दफा उनको होटल में घुसने नहीं दिया जा रहा था, मुझे 5 साल जी 6 साल पहले की कहानी है। मुझे एक एक बात याद है डॉक्टर साहब। मुझे यानी मैं अभी भी मैं कहती हूँ कि ये जो बेवा औरतें हैं, मैं समझती हूँ कि जो हिंदू समाज में जो जितनी तंग नजरी है इस मामले में, तो मतलब जी तो मैं किस तरह आपने यानी कैसे किया ये काम, आपकी दादी होती तो क्या कहती है अभी इस काम पर ये बताइए मुझे।
ऐसा है कि जो दादी होती तो निश्चित ही मना करती है, तो क्योंकि बहुत ऑर्थोडॉक्स थी वो।
हाँ, सभी होते हैं बुजुर्ग जो होते हैं ना पुराने जमाने के, वो जहर है कि उनका अपना एक अकीदा होता है।
तो लेकिन माँ भी इंतजाम नहीं है, लेकिन माँ होती तो उनको खुशी होती।
अच्छा,
कि माँ का डिफरेंट स्वभाव था, उनका था कि सब लोगों को हेल्प करना चाहिए, सब लोग उसको बात करनी चाहिए। और माँ कहती थी कि कोई भी आदमी हो उसको जो भी आप कर सकते हो मदद करो। तो हमारे माँ का जो स्वभाव था वो अलग था। वो
आपकी माँ का क्या नाम था डॉक्टर साहब?
योग माया देवी।
माया देवी। अच्छा, और मैं ये समझती हूँ डॉक्टर साहब माँ का तो किरदार था ही, आपने पिछली दफा भी बताई थी ये बात, लेकिन जो आपकी बेगम साहिबा है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, आपका साथ दिया उन्होंने, वो खड़ी रही बाप की मर्जी के खिलाफ।
ये तो है ना, उनका तो जो गहना था वो भी बेच दिया हमने, गहना दिया ही नहीं था, बहुत कम दिया था हमने।
अच्छा।
और फिर जरूरत पड़ी तो हमने उनसे गहना भी ले लिया, गहना भी बेच लिया उनका हमने। तो मेरी पत्नी का तो ये बात सही है, आप सही कहती हैं। मैं तो सबसे दुनिया भर के लोगों से कहता हूँ कि पत्नी का जो सहयोग है वो अमूल्य होता है, उसका तो कोई कीमत हो ही नहीं सकती है। और बिना पत्नी के घर शांत नहीं रहे, घर में अच्छा माहौल नहीं रहे, तो कोई पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये तो हम पत्नी के लिए वास्तव में बहुत धन्यवाद करते हैं कि पत्नी ने मुझे साथ दिया। मुझे एक बात हुआ कि पत्नी सभी नहीं कहा ये काम छोड़ दीजिए, ये काम मत कीजिए, या दूसरा कोई काम कीजिए, ये काम नहीं चल रहा है तो बंद कर दिया, सभी पति ने कहा।
तो डॉक्टर साहब बच्चे कितने हैं आपके?
एक लड़का है, 2 लड़कियां।
उनके नाम तो बताइए, मैं चाहती हूँ ताकि लोग जाने, इतना आपका खानदान को भी जाने।
ये जो ये लड़का है उसका नाम है कुमार दिलीप
जी,
और दूसरा लड़की है वह है मधुबाला
जी,
और जो इसी लड़की है वह किरण वाला।
अच्छा, तो बच्चे आपके काम में साथ देते हैं कभी, आपका हाथ बटाते हैं?
नहीं, लड़कियां तो उनकी शादी हो गई, वो अपने अपने घर में है, अपना काम करते हैं सब।
अच्छा।
और जो लड़का है उनकी अपनी कंपनी है, और लड़के से हमने कहा है कि आप ऐसा कोई नया काम करो जो संसार तुमको जाने, क्योंकि हमारे काम में रोटी मिल जाएगी लेकिन नाम नहीं होगा, लोग जानेंगे। क्योंकि जो अपने नाम से जाना जाता है वो नंबर वन का व्यक्ति होता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
जो पिता के नाम से जाना जाता है वो नंबर दो का व्यक्ति होता है।
डॉक्टर साहब मैं मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करती हूँ, और इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में और लंबी बातें होंगी।
जो बात हुई थी पहले, जो जिन्होंने हमको शुक्रिया अदा किया उसे कहिए कि हम न्यूयॉर्क आएंगे, अमेरिका तो मिलेंगे, आज पाकिस्तान के लोग होंगे।
ठीक है।
हम कराची गए हुए हैं, लाहौर गए हैं, इस्लामाबाद भी गए हैं।
ठीक है,
उन लोगों से मौका मिलेगा,
जरूर मिलेंगे। तो हम थोड़ा सा आपका तराना।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।